हम अब बात करने वाले हैं सेकेंडरी लेवल पर और हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी और उसके अंतर्गत हम बात करेंगे नेचर ऑफ स्कोप ऑफ बिजनेस पर। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस अंशुल खरवंदा जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद। सो लर्नर्स, आज हम नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस के ऊपर बात करेंगे। तो जब लर्नर्स आप भी अपने आसपास देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं और वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में खुद को एंगेज रखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ टीचर्स हैं वो स्कूल में पढ़ा रही हैं, कुछ फार्मर्स हैं वो फील्ड्स में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम कर रहे हैं, ड्राइवर्स जो हैं वो गाड़ियां चला रहे हैं, शॉपकीपर्स सामान बेच रहे हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हम भी हमारे आसपास लोग हैं वो किसी न किसी एक्टिविटीज में या किन्हीं न किन्हीं गतिविधियों में हर समय बिजी रहते हैं या अपने आप को पूरे साल जो है वो बिजी रखते हैं। अब हमारे मन में जरूर ये सवाल उठता है कि हम अपने आप को या सभी लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं हम क्यों बिजी रख रहे हैं या सब लोग क्यों सुबह सुबह उठकर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो इसका एक जो साधारण सा आंसर है वो ये है कि हम अपनी जो वॉन्ट्स हैं उनको हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो जो भी हम पे ऑब्लिगेशंस हैं या फिर हम जो भी करना चाहते हैं पैसे को अर्न करने के लिए या अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, जिससे कि हम गुड्स खरीद सकें या हमें जिन सर्विसेज की ज़रूरत है उन सर्विसेज को अवेल कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है ये इन तरह की गतिविधियों को करें। तो आज की इस चर्चा में, इस लेसन में हम और जानेंगे कि जिन गतिविधियों की हम बात कर रहे हैं वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कौन सी हैं और कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें हम अपने आप को एंगेज रख सकते हैं, हम खुद को बिजी रख सकते हैं, जिससे कि जो हमारी वॉन्ट्स हैं उनको हम जो मतलब कि जो हमारी जरूरतें हैं उसको हम पूरा कर सकें। तो आज के इस चर्चा में हम बिजनेस के बारे में जानेंगे कि बिजनेस क्या है। तो जब हम इस चर्चा के दौरान हम ये जानेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, बिजनेस क्या है, बिजनेस की को हम कैसे परिभाषित करते हैं, विशेषताएं क्या हैं बिजनेस की, उद्देश्य क्या हैं एक बिजनेस को करने के, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बिजनेस की वो कौन सी होती हैं, और या फिर टाइप्स कॉजेज या इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, या फिर रोल एक बिजनेस का एक क्या रोल होगा जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज से। तो लर्नर्स, जो भी हम देखते हैं कि एक्टिविटीज, जो भी गतिविधियां ह्यूमन बीइंग्स करते हैं या उसको उसमें वो एंगेज रखते हैं खुद को, उसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। जिन गतिविधियों की हम बात करें इनको हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या हैं, तो वो एक्टिविटीज जिनका जो उद्देश्य है हमारा उनको करने का वो पैसा कमाने का है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे कि हमने जो पहले भी एग्जांपल्स डिस्कस किए थे उसमें हमने देखा कि डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट को देखता है, या फार्मर्स जो है वो एक किसान को हम देखते हैं कि वो पौधे उगाता है, फसल की पूरी देखभाल करता है, और जो भी उससे जो भी क्रॉप्स होते हैं उनको वो सेल करके और जो पैसे कमाने की कोशिश करता है। और फिर एम्प्लॉयज़ को हम देखते हैं कि वो फैक्ट्री में काम करते हैं और काम करने के बाद उन्हें वेजेस मिलते हैं या फिर उन्हें सैलरीज मिलती हैं। इसी तरह से अगर हम एक बिजनेसमैन को देखें तो वो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो भी वो वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं, चीज़ों को बेचना, गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिसका कि ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। उसके बाद अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो एक्टिविटीज जिनको कि पैसा अर्न करने के लिए हम नहीं परफॉर्म करते लेकिन हम उससे किसी प्रकार का सेटिस्फैक्शन डिराइव करना चाहते हैं, उन्हें हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो ये एक्टिविटीज हम ज्यादातर अगर हमें कोई सोशल ऑब्लिगेशन है तो उसको परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, या अगर हो सकता है कि कोई फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो वो रोज सुबह सुबह उठकर मे बी जिम जाएंगे या दौड़ने के लिए जाएंगे या अपना कुछ दूसरी तरह से रिक्रिएशन करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम देखते हैं कि लोग बहुत सी जगह विजिट करते हैं, जैसे कई लोग सुबह मंदिर जाते हैं और हम कई बार हमें सुनने में भी आता है कि वो मंदिर में काफी ज्यादा टाइम लगाते हैं, 2-3 घंटे भी लगाते हैं। तो या फिर कुछ किसी को अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उनके अंदर कोई सेवा भाव है, कि वो उनको किसी की सेवा करके अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है, कोई बीमार है या कोई हॉस्पिटल में है या उनको उनको नर्सिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करके सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इस काम के लोग, इस तरह का काम भी लोग करते हैं। या फिर अगर कुछ विक्टिम्स हैं, मे बी वो अर्थक्वेक विक्टिम्स हो सकते हैं या कुछ कुछ भी विभिन्न प्रकार के विक्टिम्स हो सकते हैं, तो अगर उनको लगता है कि उनकी मदद करना जरूरी है तो वो उस तरह का काम करते हैं। या फिर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि खुद को एंगेज करें। या फिर कुछ लोगों को हम देखते हैं कि उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है तो वो अपना बहुत सारा टाइम उसमें करते हैं। या अगर किसी को टीवी देखना बहुत पसंद है तो आपको ऐसा भी देखते होंगे कि जो लोग घर में हैं वो दिन भर टीवी देख रहे हैं या फिर रेडियो को सुन रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं या इस तरह की जो गतिविधियां हैं जो की जा रही हैं, लेकिन ये पैसा कमाने के लिए नहीं की जा रही हैं, इन्हें करने का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वो दूसरा है। इसको हम सोशल ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए कर रहे हैं, या फिर हम अपनी फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, या फिर हमारे मन में कुछ और है। तो इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं जिससे हम पैसा नहीं कमाते हैं, इन्हें हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो कहते हैं। तो अगर हम दोनों के बीच अंतर देखें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या अंतर है, तो सबसे पहले तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनका पर्पस होता है पैसा अर्न करना, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उनका पर्पस होता है सोशल या फिर साइकोलॉजिकल मोटिव होता है उनको करने के पीछे। आउटकम अगर हम देखें तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का है, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट्स, तो इससे जो है वेल्थ का सृजन होता है हम कह सकते हैं। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको अगर हम देखें तो उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, या फिर हमें उस तरह के कार्य करके, उस तरह की गतिविधियां करके हमें खुशी का अनुभव होता है। अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनसे जो है लोग प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको करने के बाद हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें पैसा मिलेगा, लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें लोग जो है वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, या फिर ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पास में मनी आएगा या फिर इनकम आएगी। तो अगर हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, क्योंकि जैसा कि हमने डिसाइड इसमें देखा कि एक कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कुछ प्रकार भी हैं जो हमें बताए गए हैं। लेकिन उससे पहले जब हम डिफरेंस दोनों में कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं, तो उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि जैसे कि हमने बात की कि एक डॉक्टर जो है वो अपनी क्लिनिक में कुछ पेशेंट्स को देखता है और वो उससे पैसे कमाते हैं, तो ये जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जब वही डॉक्टर बच्चों को घर पे देखेगा, अपने बच्चे को घर पे ट्रीट करेगा, अगर उसके अपने बच्चे को बुखार है और वो उसे दवाई दे रहा है, और तो इस तरह की जो एक्टिविटी है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये जो वो गतिविधि हो रही है ये पैसा कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसी तरह से अगर हम एक टीचर का एग्जाम्पल लें तो जो एक टीचर है वो स्कूल में पढ़ाती हैं, अपनी सर्विसेज देती हैं और उनके एवज में उन्हें सैलरी मिलती है। लेकिन जब हम एक एक हम टीचर की जो है वो जब घर में अपने बच्चे को पढ़ाती है, क्योंकि उसका अगर होमवर्क कंप्लीट कराती है या उससे कोई कंसेप्ट समझाती है तो उस चीज के लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते, लेकिन वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये काम करती हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होगी, जो वही टीचर है लेकिन जब वो स्कूल में पढ़ा रही है तो उसके बदले में उन्हें पैसे मिल रहे हैं, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही टीचर जब घर पे अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो वहां वो एक माँ के रोल में है और वहां वो उससे पैसा कमाने का मोटिव टीचर का बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिनको कि हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि लोग अपने आप को रेगुलरली एंगेज कर लेते हैं, रेगुलर बेसिस पे एंगेज कर लेते हैं। अगर कोई डॉक्टर भी है तो वो आप देखेंगे कि उनका एक फिक्स्ड टाइम होता है क्लिनिक में बैठने का, कि वो रोज सुबह इतनी देर बैठेंगे और रोज शाम को इतनी देर बैठेंगे। अगर कोई टीचर भी है तो उनका भी एक टाइम होता है कि रोज उन्हें इस टाइम से इस टाइम तक स्कूल जाना है। इवन अगर आप बिजनेसमैन को भी देखें तो हालांकि उनके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो वो भी उनके भी काम करने का जो तरीका होता है वो रोज सुबह जाके अपने अपना जो टाइम उन्होंने खुद से सेट किया होता है उस पे, अपना शॉप है तो वो खोलेंगे या बिजनेस है या फैक्ट्री है तो उसको करेंगे, और जो भी वहां पे एम्प्लॉयज काम करने आते हैं तो वो करते हैं। तो मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी ऐसी गतिविधियां होती हैं उसमें रेगुलर बेसिस पे लोग जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं और ऑक्यूपेशन में एंगेज रहते हैं। तो ऑक्यूपेशन को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो इनको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले तो बिजनेस है, फिर प्रोफेशन, और जो थर्ड कैटेगरी है वो है एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम बिजनेस की बात करेंगे। तो बिजनेस जो है वो एक ऑक्यूपेशन है जिसमें जो गुड्स और सर्विसेज हैं उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है और या फिर उन्हें बेचा जाता है इन रिटर्न ऑफ मनी, उसके एवज में पैसा मिलता है। इसको रेगुलर बेसिस पे किया जाता है और उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग का होता है। इसी तरह से हम देखते हैं जैसे माइनिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है या कोई भी ट्रेडिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, स्टोरिंग है, बैंकिंग है या फिर इंश्योरेंस है, ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं बिजनेस एक्टिविटीज के। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो प्रोफेशन है। आज जो भी एक प्रोफेशनल है वो जरूरी नहीं है कि वो हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, मतलब कोई भी पर्सन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनका किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो। जैसे कि अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो हम ऐसे ही लोग डॉक्टर होते हैं जिनका मेडिकल फील्ड में स्पेशलाइजेशन होता है, या फिर जैसे लॉयर्स हैं तो उनका लीगल फील्ड में स्पेशलाइजेशन होता है। तो जब हमें इनकी जरूरत होती है तो हम उन्हीं की खोज करते हैं। अगर हमें कोई लॉयर की तलाश है तो हम वही लॉयर ढूंढते हैं जिनका उस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन होता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो प्रोफेशनल्स हैं या फिर प्रोफेशन में एंगेज्ड हैं। तो प्रोफेशन जो है उसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है उसको करने के लिए, और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रोफेशन को करने का वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। और जो भी प्रोफेशनल बॉडी होती है वो प्रोफेशन को गाइड करती है या फिर हम कह सकते हैं कि रेगुलेट करती है, और प्रोफेशनल्स का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कंसर्न्ड प्रोफेशनल बॉडी जो है वो बनाती है। जैसे कि अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें तो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो प्रोफेशनल बॉडी है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको जो है रेगुलेट करती है और डेवलप करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है ऑक्यूपेशन की वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में हम देखते हैं कि एक पर्सन जो है वो रेगुलरली किसी दूसरे पर्सन के लिए वर्क करता है, काम करता है। तो जो दूसरा पर्सन जिसके लिए वो काम कर रहा है वो एम्प्लॉयर होता है, और जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉई होता है। हम इस तरह के जो सर्विसेज हैं वो हम देखते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को देखते हैं, कंपनी एग्जीक्यूटिव्स को देखते हैं, बैंक ऑफिशियल्स को देखते हैं, या इवन हम फैक्ट्री वर्कर्स को भी देखते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट में हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट में होते हैं उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो उन्हें फॉलो करनी होती हैं रिगार्डिंग कि क्या वर्क परफॉर्म करना है, कितने उनके आवर्स ऑफ वर्क होंगे, अमाउंट ऑफ सैलरी या वेजेस कितनी होंगी, और कौन सी फैसिलिटीज होंगी जो उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी। जो एम्प्लॉयर जो है जो उनको जॉब ऑफर करता है नॉर्मली वही इन कंडीशंस को डिसाइड करते हैं। और जो भी पर्सन जॉब को ढूंढ रहा है उनको, या फिर उन जॉब के लिए उन्होंने आना चाहते हैं, तो वो इन कंडीशंस को देख सकते हैं, उनको जानने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि वो इन कंडीशंस पे काम करना चाहते हैं और उनसे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। और जो रेम्यूनरेशन भी पे होना है वो एम्प्लॉई को, वो फिक्स्ड होता है, और या तो वो एक वेज के फॉर्म में होता है या एक सैलरी के फॉर्म में होता है। इसके बाद लर्नर्स, बिजनेस का मतलब क्या है? जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस का मतलब क्या है, या फिर बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो एक हमने बात करी कि एक रेगुलर एक्टिविटी है, तो या तो इसमें रेगुलर प्रोडक्शन हो रहा है या फिर परचेज हो रही है गुड्स और सर्विसेज। किस लिए हम परचेज कर रहे हैं? उसको रीसेल करने के लिए, जिससे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट अर्न करने का, वो हम पूरा कर सकें। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की बात करें कि बिजनेस की क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले तो बिजनेस जो है वो गुड्स और सर्विसेज में डील करता है। जो भी लोग बिजनेस में एंगेज्ड होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो या फिर और भी तरह के गुड्स, जैसे जो मार्केट्स में हम देखते हैं कि कंज्यूमर गुड्स हैं जो हम अर्ली मॉर्निंग से ही कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, ब्रेड है, बटर है, मिल्क है, टी है, या फिर कुछ कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं जो हम अपने बिजनेस के लिए लेते हैं, जैसे कि प्लांट है, मशीनरी है या फिर इक्विपमेंट है, तो ये जो, या फिर कुछ सर्विसेज भी हो सकती हैं, जैसे कि जिनका भी हम अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज करते हैं उन सर्विसेज को, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयरहाउसिंग है, एडवर्टाइजिंग है, या फिर और भी हैं। दूसरा जो विशेषता है बिजनेस की वो है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी पर्सन जो है वो बिजनेस में एंगेज्ड है, वो या तो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है या फिर उनको खरीद रहा है, वो जो है वो बिजनेस में हम कह सकते हैं कि वो एम्प्लॉयड है, बिजनेस में एंगेज्ड है। या अगर कोई पर्सन जो है वो गुड्स को खरीद रहा है अपने कंजम्पशन के लिए या फिर किसी और को गिफ्ट करने के लिए, तो इस तरह के पर्सन को हम नहीं कहेंगे कि वो बिजनेस में एंगेज्ड है। तो बिजनेस की जब हम बात करते हैं, जो बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं या फिर जिनको हम परचेज कर रहे हैं, उनको एक्सचेंज हमें करना है। क्यों एक्सचेंज करना है? फॉर मनी एंड फॉर प्रॉफिट, तो जिससे कि हम प्रॉफिट कमा सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस की बात करें, तो वो है रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने कोई काम एक बार करा, अगर मान लीजिए आपके पास एक कार थी, वो पुरानी हो गई, आपको लगा कि इसे बेच देना चाहिए, आपने उसे बेच दिया, तो ये एक बिजनेस नहीं हो जाता है कि आपके पास गुड था और आपने उसको बेच दिया और उसे आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो ये बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस एक रेगुलर एक्टिविटी होती है, तो उन गुड्स में जिनमें आप रेगुलरली डील करते हैं और आप प्रॉफिट कमाते हैं, उसको बिजनेस कहा जाएगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो हर बिजनेस एक्टिविटी में कुछ इन्वेस्टमेंट जो है लैंड के टर्म्स में हो सकती है या फिर लेबर के टर्म्स में हो सकती है या फिर कैपिटल के टर्म्स में हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रॉफिट अर्निंग, जो है वो बिजनेस का मोटिव होता है। जो बिजनेस एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती हैं उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो इनकम को अर्न करना होता है बाय द वे ऑफ प्रॉफिट, कि हम किस तरह से प्रॉफिट को इनकम अर्न करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रॉफिट के बिना जो बिजनेस है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक बिजनेस सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए प्रॉफिट को अर्न करना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो बिजनेस है उसको टाइम टू टाइम एक्सपैंड किया जा सके और बिजनेस फ्लरिश कर सके, ग्रो कर सके। उसके बाद बिजनेस में हमेशा रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है या फिर इनकम में अनसर्टेनिटी रहती है, तो हम सभी जानते हैं कि हर बिजनेस जो है उसका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो जो भी बिजनेस मैन जो उसमें इन्वेस्टमेंट भी करता है, बहुत सारी रिसोर्सेस को इन्वेस्ट करता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे बदले में एक फेयर अमाउंट मिलेगा, बट कभी कभी होता है कि बिजनेसमैन के अपने बेस्ट एफर्ट्स डालने के बाद भी जो रिवॉर्ड उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सर्टेन नहीं होता है. कभी कभी तो उन्हें प्रॉफिट्स मिलते हैं और वो इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है उन्हें हैवी जो लॉसेस हैं उनका भी सामना करना पड़ सकता है. ये इसलिए होता है क्योंकि फ्यूचर जो है वो हमेशा अनप्रडिक्टेबल है और बिजनेसमैन का प्रैक्टिकली इस पे कंट्रोल नहीं हो पाता है. और इसके अलावा भी कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. तो लर्नर्स, अब हम ये जानेंगे कि बिजनेस को करने के उद्देश्य क्या है, जो कि हम बार बार कहते आ रहे हैं. हमने अपनी परिभाषा में भी ये जाना कि बिजनेस को जब हम करते हैं तो बिजनेस को करने का जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है वो प्रॉफिट अर्निंग है. तो मेन ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस को करने का प्रॉफिट अर्निंग है, बट और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ में बिजनेस को किया जा सकता है. तो इन ऑब्जेक्टिव्स को मुख्यतः जो है वो बांटा गया है इकोनॉमिक एक्टिव ऑब्जेक्टिव्स में, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स. तो अब इन पर हम एक एक कर बात करेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हम प्राइम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो प्रॉफिट अर्निंग है. तो हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से बात अपनी शुरू करेंगे. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट है, या ऐसे और ऑब्जेक्टिव्स जो कि जरूरी हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जिसमें और भी ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडेड हैं जैसे कि क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स है, रेगुलर इनोवेशंस है, या फिर बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स की, तो कोई भी बिजनेस यूनिट जो है वो तब तक सर्वाइव नहीं कर सकता या प्रॉस्पर या फिर फ्लरिश नहीं कर सकता जब तक कि उनके पास में प्रॉपर या फिर बहुत सारे कस्टमर्स नहीं हैं जो उनके गुड्स प्रोडक्ट्स या फिर जो सर्विसेज हैं उनको खरीदेंगे और उनको यूज करेंगे. तो बिजनेसमैन जो है वो तभी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जब वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स और अच्छी सर्विसेज रीजनेबल प्राइस पे जो है वो ऑफर करेंगे. इसलिए हमें अगर हम इसमें देखें तो इसमें जरूरत है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें अपने इन नए प्रोडक्ट्स के लिए. तो इसको किस तरह से किया जा सकता है, अपनी जो डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको यूज करके वो मैक्सिमम कस्टमर्स जो हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको अच्छे गुड्स और सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं बेस्ट प्राइसेस में. उसके बाद कंटिन्यूस इनोवेशंस हैं, क्योंकि बिजनेस जो है वो एक इस तरह का एंटरप्राइज होता है, हाईली डायनेमिक एंटरप्राइज होता है हम कह सकते हैं, और उसको कंटिन्यू करने के लिए जरूरी नहीं है कि जो उनकी प्रेजेंट जो एक्टिविटीज हैं वो वही परफॉर्म करते रहें. टाइम टू टाइम बिजनेस को इनोवेट भी करना पड़ता है. लेकिन जैसे कि अगर अभी कोई टीवी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में है तो वो देखते होंगे कि टीवी में कितने चेंजेस आए. पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, फिर कलर्ड टीवी आया, फिर एलसीडी है, एलईडी है. तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशंस हो रहे हैं, और अब हम देखते हैं कि थ्रू स्क्रीन या थ्रू प्रोजेक्शंस भी जो है वो टीवी देखा जा सकता है. तो बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, इसलिए जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए एज अ बिजनेसमैन कि क्या मार्केट में और अवेलेबल है, उसमें से चीपर ऑप्शंस कौन से हैं, जो कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं उनकी नीड क्या है, क्या वो ब्रांड पे फोकस कर रहे हैं या वो प्राइस पे फोकस कर रहे हैं. मतलब अगर आपको ये सब चीजों की जानकारी होगी, अगर आप इन सब चीजों को एनालाइज करेंगे, उसके बाद जो है आप जो कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं उनको सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट दिखा सकेंगे, ऑफर कर सकेंगे, और जो है उसमें भी कस्टमर्स को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है. लेकिन जब हम यहाँ इनोवेशंस की बात करते हैं तो और भी चीजें हैं कि अगर बिजनेस एक ही चीज पे स्टिक होके चलेगा तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो चीज आउट ऑफ फैशन हो गई, या फिर उसकी अब मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, या फिर कुछ रूल्स या लॉज या नॉर्म्स बदलने के कारण से उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना पड़ रहा है. तो और स्ट्रैटेजीज की भी जरूरत है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें तो हम लोग देखते थे कि जगह जगह पर पीसीओ बूथ होते थे और जो भी लोगों को फोन करना होता था, ISD, STD, बहुत सारे लोग हम देखते थे, इवन लोकल कॉल्स के लिए भी वो PCO जाया करते थे. लेकिन धीरे धीरे जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने इस तरह के इनोवेशंस किए या इस तरह की सर्विसेज ऑफर करी कि धीरे धीरे PCO जो है वो एब्सोल्यूट हो गए और उनको उनका यूज एक तरह से बंद हो गया. तो जो भी लोग PCO चला रहे थे उनके लिए जरूरी था कि वो साथ में, जो लोग साथ में और भी काम कर रहे थे, उनके साथ में कुछ फोटोकॉपियर मशीन थी या कुछ इस तरह से लैमिनेशन का काम था, कुछ स्पाइरल बाइंडिंग का काम था, तो उनके लिए इजी हो गया कि वो उस लॉस को दूसरे अपने जो काम है उसमें शेयर कर पाए. लेकिन जो टोटली उसी पे ही फोकस्ड थे उनके लिए वो ज्यादा, उनके जिनके लिए वो एक रोजगार का ऑप्शन था, उनके लिए उसमें एक बड़ा लॉस था. तो इस तरह से जो हमारा बिजनेस भी होता है उसको हमें कंटिन्यूअसली इनोवेट करने की जरूरत होती है कि और क्या क्या चीजें हैं जो हम अपनी सर्विसेज के साथ में, जो अब प्रेजेंटली हम बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ में हम इसको ऑफर कर सकते हैं. अगर कोई चीज कम यूजफुल है या हमें लगता है कि इसको हम धीरे धीरे एक्सक्लूड कर सकते हैं तो उसके बारे में भी हमें विचार करना पड़ता है. उसके अलावा बिजनेस में बहुत जरूरी है कि हम बेस्ट पॉसिबल यूज करें रिसोर्सेस का. तो आपके उसके लिए आपके पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए, फंड्स होने चाहिए, जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो आपके पास मशीनरी खरीदने के लिए या फिर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और या फिर डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं उनको आपको मीट करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मैन है, मटेरियल है, मनी है या मशीन्स हैं, इनको आप बेस्ट पॉसिबल तरीके से आप कर सकें. तो ऑब्जेक्टिव तभी अचीव हो सकता है जब हम एफिशिएंट वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे, जो उस जो मशीन्स का फुल यूटिलाइजेशन कर सकेंगे, मिनिमम वेस्टेज होगी और रॉ मटेरियल्स को भी इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे. उसके बाद लर्नर्स, जब हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हमें सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए करना है. कोई भी बिजनेस जो है वो एक लॉफुल एक्टिविटी नहीं है तब जब तक कि वो किसी भी सोसाइटी को ट्रबल देने की कोशिश कर रहा है. तो जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के, उसमें जो है प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्लूडेड है फेयर कॉस्ट पे, और अडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, या कॉन्ट्रीब्यूशन टू जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी भी जो है इसमें इंक्लूडेड है. तो अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, तो बिजनेसमैन का भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो वो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं वो उस कॉस्ट पे बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स हों. खाली प्रॉफिट अर्निंग ही आपका मोटिव, बिजनेसमैन का मोटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ जो प्रोडक्ट्स हैं वो फेयर होने चाहिए, वो राइट टाइम पे सप्लाई होने चाहिए, उनका जो प्राइस है वो सही होना चाहिए. तो जो जो हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो गुड्स की जो जो गुड्स हम बेच रहे हैं, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी के हिसाब से हमें सोसाइटी को ऑफर करना है. उसके अलावा अडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की हम बात कर रहे हैं, तो हर एक सोसाइटी में हम देखते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं जैसे ब्लैक मार्केटिंग है या फिर ज्यादा पैसे महंगी चीजें बेचना है जिसको कि सराहा नहीं जाता है. तो इसके अलावा हम देखते हैं कुछ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट भी दी जाती हैं या फॉल्स एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स किस तरह से है. तो जो भी बिजनेस यूनिट है उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि एक आर्टिफिशियल चीज वो प्रोवाइड कर दें या उस गुड की वो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर दें. इस तरह का ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बिक जाए या आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं वो फर्म के लिए एक बैड नेम अर्न करती हैं और कई बार बिजनेसमैन को इसके लिए पेनल्टी या फिर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है. तो इसलिए जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो बिजनेस का वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने का होना चाहिए. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंट्रीब्यूशन टू जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो बिजनेस यूनिट्स को ये काम भी करना चाहिए कि वो जो जनरल वेलफेयर है या अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी है उसके लिए भी काम करें. तो आजकल हम जैसे देखते हैं कि कई सारे बिजनेस में जो है उनका CSR का भी ऑप्शन होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें जो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके का काम लेते हैं. तो कई बिजनेस यूनिट जो हैं उन्होंने स्कूल्स इस्टेब्लिश किए हैं या फिर पार्क्स इस्टेब्लिश किए हैं. तो इस तरह के जो काम हैं वो भी बिजनेस यूनिट्स ले सकते हैं, जिससे कि जिस सोसाइटी में बिजनेस वो कर रहे हैं उसका एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट भी हो, क्योंकि जो बिजनेस है वो भी एक पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम है, एक हमारे पार्ट ऑफ एनवायरमेंट है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी के प्रति. उसके बाद अगर हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो जो एम्प्लॉयज की जो सेटिस्फेक्शन है या जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करते हैं. जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं कि कई लोग जो है काम कर रहे होते हैं लेकिन वो सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या जिस काम में उनकी एक्सपर्टीज है वो उन्हें प्रोवाइड नहीं की जा रही है. इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी हम देखें, जिससे कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी वेलबींग को देखा जा सके, उनका जो सोशल और जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है उसको भी देखा जा सके. तो सबसे पहले इसमें हम इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज की बात करेंगे, तो उन्हें एक फेयर रेम्यूनरेशन दी जानी चाहिए, इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए उनकी परफॉर्मेंस के लिए अगर उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बेनिफिट्स जैसे कि प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है या फिर और एमिनिटीज हैं जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, इस तरह की फैसिलिटीज जो है उन्हें दी जानी चाहिए. इससे होता क्या है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो सेटिस्फाइड फील करते हैं और उनको भी इच्छा होती है कि वो बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करें. उसके अलावा सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी है एम्प्लॉयज का. तो जो बिजनेस यूनिट्स हैं ये उनकी ड्यूटी है कि वो सोशल या फिर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज को दें. तो ये तभी पॉसिबल है जब जो जॉब है उसका उनको जब जो उनका जॉब है उसे इंटरेस्टिंग और या फिर चैलेंजिंग बनाया जा सके, जो राइट पर्सन है एक जॉब के लिए उसको ही वो जॉब दिया जाए और जो मोनोटनी है काम की उसको किसी तरीके से कम किया जा सके. उसके अलावा जो भी अगर एम्प्लॉयज हैं उनकी कुछ शिकायतें हैं, कुछ ग्रीवेंसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, तो उनको भी सीरियसली लिया जाना चाहिए और जो भी उनके अनसेटिस्फैक्शन या उनके डिससेटिस्फाइड होने का जो कारण है उसे देखना चाहिए. उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक जो है इसमें इम्पॉर्टेंट मुद्दा है. तो जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग या फिर जो उनका डेवलपमेंट है जिससे कि वो प्रोफेशनली ग्रो कर सकें, ये बहुत जरूरी है. बिजनेस जो है तभी प्रॉस्पर कर सकता है अगर जो लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं उनके स्किल्स या फिर जो उनकी एबिलिटीज हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज हैं, वो रेगुलरली इम्प्रूव होती रहें. इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बिजनेस है वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें. उसके अलावा जो वेलबींग है सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी लोगों की, वो भी उनको देखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस यूनिट जैसा कि हमने बात किया कि एक वो भी एक पार्ट है सोसाइटी का, तो उन्हें हेल्प करना चाहिए जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर जो लोग फिजिकली या फिर मेंटली चैलेंज्ड हैं, उनको वो किस तरह से उनको उनकी प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सकते हैं. मे बी वो उनको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिला सकें या कुछ इस तरह के काम कर सकें या फिर कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को अवार्ड्स या फिर स्कॉलरशिप्स दे सकें या हायर स्टडीज के लिए. तो इस तरह के भी कुछ जो काम है उन्हें ध्यान में रखना चाहिए. उसके बाद जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हर एक बिजनेस का ये भी एक रोल होता है कि वो जो नेशनल गोल्स हैं या फिर जो नेशनल एस्पिरेशंस हैं उनको भी वो पूरा कर सकें. तो अगर हम नेशन एज अ होल बात करते हैं तो बिजनेस का काम होता है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं बिजनेस यूनिट्स तो जो है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होता है जो भी लोग हैं उनका, और इसको हम न्यू जो बिजनेस यूनिट्स है उसको एस्टैब्लिश करके कर सकते हैं या जो प्रेजेंट बिजनेस यूनिट्स हैं उनको एक्सपैंड करके कर सकते हैं और वेरियस जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनको वाइडन कर सकते हैं. उसके अलावा जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी होना चाहिए. जो भी जो प्लान्स हैं गवर्नमेंट की, जो पॉलिसीज हैं उनके हिसाब से जो नीडेड है या जो प्रायोरिटी एरियाज हैं उन पे बिजनेस यूनिट्स को काम करना चाहिए। उसके अलावा कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री, जो भी बिजनेस ओनर्स हैं उनको अपने टैक्सेस या फिर जो अपने ड्यूज हैं उनको उनका ऑनेस्टली पेमेंट करना चाहिए, रेगुलर पेमेंट करना चाहिए। इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा और इसको जो है डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेल्फ सफिशिएंसी और एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो किसी भी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनने के लिए बहुत जरूरी है कि जो उनके बिजनेस यूनिट्स हैं उनकी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे रेस्ट्रिक्टेड किया जाए और जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, जिससे कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं कंट्री के वो बढ़ सकें। इसके अलावा कुछ ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे कि अगर हम कंट्री एज अ होल बात करें तो किस तरह से हम जो जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अपनी कंट्री का उसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारे बिजनेस हैं जरूरी नहीं है उसको हम अपनी कंट्री के अंदर ही प्रोवाइड करें, हम किस तरह से नेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, रीजनल प्राइसेस पे दे सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी एक इस पे भी बिजनेस यूनिट्स को ये भी एक बिजनेस यूनिट्स का एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जैसा कि हमने कहा कि हमें अक्रॉस द नेशन भी जाना है, अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ नेशन भी जाना है, उससे होगा क्या कि जो डिस्पैरिटीज हैं वो भी कम होंगी, कि नेशंस में जो आपस में जो भेदभाव है चाहे वो रिच पुअर का हो या जो भी हो, तो उस जो अमंग्स द नेशन जो डिस्पैरिटीज हैं उनको भी इससे कम किया जा सकता है। और उसके अलावा जो गुड्स हैं उनको भी ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल किया जा सकता है, तो जो हमारे गुड्स और सर्विसेज भी हैं जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अवेलेबल हो पाते हैं। सो लर्नर्स, आज हमने नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस पे चर्चा की और मुझे लगता है कि आपको जरूर ये लेसन समझ में आया होगा।